युगल हैं और उनका स्वरूप जानते हैं तो काफी भ्रांतियां निकले ऐसी गुंजाइश उसमें बनी रहती है। निकले माने हमारी क्या मान्यता इन धर्मों को समझने से दूर हो जाती है। भाग्य के पेज नंबर 51 पर ईश्वर नय और अनिश्वर नय यदि इसका व्याख्यान न पढ़े तो कोई दूसरी कल्पना हम कर लेंगे, लेकिन इसमें ईश्वर नय का अर्थ है पराधीन होने की योग्यता और ईश्वर नय का अर्थ है स्वाधीन रहने की योग्यता। गजब बात। देखिए पेज नंबर 51 पर सबसे नीचे आत्मद्रव्य ईश्वर नय से धाय की दुकान पर दूध पिलाए जाने वाले राहगीर के बालक के समान परतंत्रता को भोगने वाला है और अनीश्वर नय से हिरण को स्वच्छंदता पूर्वक फाड़ कर खा जाने वाले सिंह के समान स्वतंत्रता को भोगने वाला है। धन्य है आचार्यों की वितरागता, उन्हें अपने धर्म समझाने से मतलब है, चाहे उसमें भयंकर हिंसा वाला उदाहरण भी क्यों न देना पड़े उन्हें इसकी परवाह नहीं। कभी कभी गुरुदेव फरमाते ना, आ तो भाई वितराग में मार्ग छे, संतों के तो सत्य को जाहिर करना है, समाज में समतोल रहेगा कि नहीं रहेगा कि क्या होगा इसकी कोई परवाह नहीं है। तो उन्होंने राहगीर के बालक का उदाहरण भी दिया कि शायद कम लोगों की समझ में आया होगा, पहले जब इतने ज्यादा आवागमन के साधन इतने फास्ट नहीं थे, पैदल और बैलगाड़ियों के युग का ही जमाना था, तो जैसे आजकल जगह जगह ढाबे हैं, चाय पान की दुकानें हैं, बच्चों को दूध पिलाने वाली धाय माता की भी पैसे मतलब वो होते थे, ख्याल में आए ना, मदर मिल्क कैफे आज अगर बनते तो ऐसा नाम देते हो। दुर्भाग्य से मान लो कोई माँ के आंचल में दूध नहीं आवे किसी कारणवश, तो उसका बालक धाय माता के दूध पर निर्भर रहता था, तो वो उसकी व्यवस्था करती थी, यानी दूध भी पहले दूध किराए से मिलता था तो माँ भी किराए से मिलने लगे तो वो पराधीन है, मिलेगी जब मिलेगी और जब वो फुर्सत होगी, जब उसको समय होगा तब पिलाएगी, नहीं तो बालक भूखा रहेगा, रोएगा, ख्याल में आए ना। तो पराधीन बालक क्यों हुआ, ये तो उदाहरण की बात है। तो आत्मा में ऐसी कौन सी पराधीनता है, हमें कौन सी धाय माता चाहिए, ये पांच इंद्रिय के विषयों की गुलामी ये हम में किसने पैदा की, विषयों ने की, हम ही हुए हैं गुलाम। इस मामले में भी गुरुदेव के जो व्यंग हैं, बेचार बिड़ी न पिए त्या सुरी सूखे भाई, पाए खाना न होए आवा तो लक्षण से भाई साहब ना आवा लक्षण में केम आबे कितनी अलावा देखिए चरणानियों को भी कितनी करुणा से प्रस्तुत कर देते हो इंद्रिय विषयों की गुलामी हमारी पर्याय में होवे ऐसी योग्यता हमारी पर्याय में स्वभाव में पड़ी है। पर्यायगत स्वभाव कौन सा स्वभाव है जी, पर्याय संबंधी स्वभाव है, पर्यायगत स्वभाव है। और वैसी पराधीनता होने पर भी आत्मा का स्वाधीन स्वभाव अखंडित रहे, ख्याल में आए ना, ऐसी भी उसमें त्रिकालिक योग्यता पड़ी। दो चार पॉइंट इसके पढ़ते हैं, 52 पेज पर देखिए दूसरा पॉइंट। यहाँ ईश्वर धर्म का प्रयोग बड़ा विचित्र और दुर्लभ लगता है, वैसे इसके अलावा और कहीं आपको ईश्वर का ऐसा अर्थ मिले तो बताना, क्या पराधीनता भोगने की योग्यता, ऐसा अर्थ यहीं पर है, इसलिए मैंने कहा विचित्र भी है थोड़ा और दुर्लभ तो है ही है।
कर्म का एक पर्यायवाची ईश्वर नाम
है,
कर्म जो उदय होता ना, कर्म उसको ईश्वर नाम से,
उसको ईश्वर नाम दिया, तो इसलिए तो ईश्वर नय बना दिया है, क्यों कर्मों की पराधीनता है ना संसार अवस्था में, कर्मों के पराधीन है ये जीव। ईश्वर शब्द का अर्थ तो ऐश्वर्य को भोगने वाला अथवा सर्वशक्तिमान स्वाधीन सुपर पावर के रूप में जाना जाता है। दुनिया में प्रसिद्ध ईश्वर माने बहुत ऊंची चीज है, सर्वोत्कृष्ट, परंतु यहाँ उसे पराधीनता भोगने की योग्यता के रूप में कहा जा रहा है। इसमें यही दृष्टिकोण हो सकता है कि ये जीव अपने स्वाधीन स्वभाव को भूलकर, गुरुदेव ने अर्थ किया है कि इस योग्यता को ईश्वर नाम क्यों दिया, कि तूने अपने ईश्वरत्व को नहीं पहचाना और दूसरे को अपना ईश्वर बना लिया। ईश्वर माने मालिक बना लिया, स्वामी बना लिया, दूसरे के अधीन हो गया, यानी पर पदार्थ को अपना ईश्वर बना लेता है। अतः ये योग्यता ईश्वर धर्म कही गई। ये बात ध्यान देने योग्य है कि आत्मा में स्वयं पराधीनता भोगने की योग्यता है, जिसके कारण ये पराधीनता भोगने में स्वतंत्र है। काय में स्वतंत्र है, गजब, पराधीनता भोगने में स्वतंत्र है। अपने लोक जीवन में ऐसे प्रसंग बहुत बनते है, जैसे बच्चे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पढ़ाई कर लेते, दो चार डिग्री ले लेते, अब 10 कंपनियों से ऑफर आ गए। काय के ऑफर है, ये देखने की दृष्टि में फर्क है। हमें ऐसा लगता है 15 लाख का ऑफर है, 20 लाख का ऑफर है, अरे माँ बाप के तो क्या बोलते हैं, गलगलिया छूटता है। लेकिन वो उसे 24 घंटे गुलाम बनाने का ऑफर है। यहाँ तो उतना समय नहीं है इस लाइन पर जाने का, मैं कोई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने से मुझे इस पर बहुत दर्द है इस बात, और पंडित साहब भी इस बात की बहुत चर्चा करते हैं कि काय की पढ़ाई, वो कहाँ जाएगा पैसा, या तो व्यसनों में जाएगा, या डॉक्टरों के यहाँ जाएगा, बीमा कंपनी वालों के यहाँ जाएगा, सब ख्याल में है ना। तो अब वो लड़का चुनाव करता है कौन सी कंपनी अच्छी है, तो चुनाव करने की स्वतंत्रता उसे है कि नहीं, है ना। काय का चुनाव करने की स्वतंत्रता है, अपना मालिक बनने, हमारा मालिक कौन बने उसका चुनाव करने की स्वतंत्रता है। दूसरा, आजकल डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, पहले राजा का पुत्र राजा बनता था, जिसको अपन राजतंत्र कहते थे। अब राजा जनता चुनती है, हम खुद चुनते हैं, किसको चुनते हैं, अपने स्वामी को। कहने के लिए तो सिद्धांत भाषा तो इतनी, क्या बोलते हैं वो पॉलिश वाली है कि जनता मालिक है। लेकिन 5 साल में एक बार मालिक है, काय के लिए, गुलाम बनने के लिए, किस पार्टी के नीतियों के अनुसार चलना पड़ेगा। हर 6 महीने में रेल किराए बढ़ेंगे, तो मैंने वोट दिया था उस गवर्नमेंट में, हर 6 महीने में बढ़ेंगे, हर महीने डीजल के रेट बढ़ेंगे। अब तो तुम पराधीन है कि नहीं है, समझ में आया ना। तो ये पराधीनता हमने स्वयं स्वीकार की, ये तो हमारे लोक जीवन की बात हुई। और आगम में जैसे प्रवचन सार की 16वीं गाथा है, उसमें स्वयंभू शब्द का प्रयोग है, और स्वयंभू मतलब आत्मा अपने परमन में, चाहे संसार में पराधीन होकर घूमे, उसमें भी स्वयंभू कर्म उसको अधीन कराते हैं, ऐसा नहीं। ये गुरुदेव ने इसमें से निकाला। देखो, वस्तुतः कोई द्रव्य, चौथा पॉइंट, कोई द्रव्य पराधीन हो नहीं सकता, आत्मा भी पराधीन नहीं होता, अपितु विकारी परमन में पराधीनता भोगता है। तो अगर योग्यता नहीं होती तो कैसे भोगता। आज सुबह भी योग्यता की बहुत बातें आ रही थी। कोई पर्याय बिना योग्यता के होती नहीं। अब योग्यता अदृश्य है, अमूर्तिक है, अगम्य है, हमें क्या पता उसमें वो योग्यता थी कि नहीं। इसके लिए एक बहुत सुंदर वो छंद मैंने कल बताया भी था, हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा अलंग शक्ति भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा। हेतु द्वय माने निमित्त और उपादान, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण, उनसे उत्पन्न होने वाला कार्य ही जिसका लिंग माने चिन्ह है। ये अलिंगण के 20 अर्थ है ना, 20 लिंग है जिससे भिन्न है आत्मा, ऐसे वो 20 अर्थ हो गए अलिंगण के। तो हेतु द्वय से उत्पन्न होने वाला कार्य ही लिंग है। इसको यूनिक समझोगे आप, मान लो कोई दुर्घटना घट गई, एक बस खाई में गिर गई और 50 आदमी मर गए, किसी के पास समंत भद्र जैसी बुद्धि वाले के पास सूचना आई ऐसा हो गया, ऐसा तो होना ही था, तुमको कैसे पता कि ऐसा होना था, तो हो गया ना। कार्य लिंगा माने का लिंगा स्त्री लिंग में लगाया क्योंकि वो योग्यता का विशेषण बनाना है, कार्य जिसका लिंग है ऐसी भवितव्यता। तो वो कार्य स्वयं ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वस्तु में ऐसी योग्यता थी, तो जो कार्य होगा उसी की योग्यता, जो कार्य अरे पास होने में तो योग्यता चाहिए लेकिन फेल होने में भी योग्यता चाहिए, फेल होने में भी योग्यता चाहिए, तो बिना योग्यता के कोई काम नहीं होता। हाँ नहीं होता तो आप कैसे माने। अच्छा आप उल्टा मानो, बिना योग्यता के हो जाता है, ऐसा मान के देखो, दो मिनट मान के देखो, बिना योग्यता के हो जाता है और बोलो टिकोगे दो मिनट भी उल्लास भाई, तो फिर आम का वो बोगे क्या बोलते गुठली और उसमें से नीम का फल निकले, नीम बो और आम निकले, सुनार को सोना दो अंगूठी बनाने के लिए और वो जो अंगूठी बनते बनते वो सोना तांबा बन जाए, समझ में आए ना। गेहूं बो और ज्वार निकल जाए, जो ये कार्य ऐसे असंभव कार्य नहीं होते हैं, ये योग्यता को सिद्ध करता है। तो पराधीन होने की योग्यता आत्मा की पर्याय में स्वयं है, यानी दूसरे ने तेरे को पराधीन नहीं बनाया तो दूसरों का दोस्त देखने की दृष्टि छोड़ना, ये इसका लाभ है। और छठवां देखिए आप, कैसा भी संयोग हो कैसा भी कर्मोदय हो, आत्मा अपने स्वरूप का लक्ष्य करके अतीन्द्रिय आनंद भोगने में स्वतंत्र है, जब चाहे तब चाहे, तो व्यवहार की भाषा है, जब उसकी उसकी योग्यता का सुकाल पकेगा पर से लक्ष्य हटा के स्वभाव का निर्णय करने का, तो उसमें भी स्वतंत्र है, वह स्वयं ही अपना ईश्वर है, अन्य कोई ईश्वर नहीं, दूसरा कोई ईश्वर नहीं, इसलिए उस योग्यता का नाम क्या रखा, अनीश्वर नहीं। और दूसरे को ईश्वर बना लिया तो इस योग्यता का क्या नाम रखा, ईश्वर ने। गुरुदेव ने इसके मामले में बहुत सुंदर एक कमेंट से लिखा है, नेक्स्ट पेज पर देखिए। पर्याय में राग द्वेष होने से जितनी पराधीनता है उसका ज्ञान धर्मी जीव को रहता है, पर उसी समय अंतर्दृष्टि में आत्मा की स्वाधीन प्रभुता का ज्ञान भी रहता है। ये जो व्यवहार जाने लो प्रयोजन वांछे वाली बात है, ये भी इतना लाभ है, ये भी ज्ञान में आता है, इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, उसको जानने का लाभ क्या है, एक तो ये कि मेरे को इतना रास्ता और तय करना है, इतनी कलमस्ता और दूर करना बाकी है, अपनी भूमिका का ज्ञान होता है, ध्यान में आए ना। और जो हुआ है सो मेरी योग्यता से हुआ है, पढ़ने नहीं कराया, तो पराधीन दृष्टि भी टूटती है इस धर्म को समझने से, क्योंकि ईश्वर ने के समय अनीश्वर ने की अपेक्षा भी साथ ही है, जहां अपने द्रव्य स्वभाव की त्रिकाली ईश्वरता से चूके बिना मात्र पर्याय की पराधीनता संबंधी ईश्वरता पर को देता है। कितनी दी हमने पराधीनता दूसरे को, मान्यता में तो हमने सर्वस्व समर्पण कर रखा है पर के लिए, लेकिन वस्तु व्यवस्था में हम कर नहीं सकते। देखो एक बात और समझना, पराधीनता में ऐसा लगता है कि पर के अधीन हम हुए तो पर का कुछ कर्तृत्व है, ऐसा नहीं है, ये बताने के लिए वो ईश्वर नाम का धर्म बताया जाता है। तो जो पराधीन मात्र पराधीनता संबंधी ईश्वर, पर्याय की पराधीनता संबंधी ईश्वरता पर को देता है, मैंने मान लिया कि ये परद्रव्य मुझे राग द्वेष कराते हैं, समझ लो वो पराधीन हो गया, वो जी पर से मेरा लाभ हानि होता है, पर से मुझे सुख दुख होता है, ये मान्यता ही पर को समझ लो अपना ईश्वरत्व तो प्रदान करने वाली बात हुई। परंतु जो स्वभाव की ईश्वरता को भूल कर, ये पंक्ति ध्यान देने योग्य है, स्वभाव की ईश्वरता को भूलकर मात्र पर को ही ईश्वरता प्रदान करे वो ईश्वर ने भी उसे सच्चा नहीं है। एक अपने आप बात चलती है, नए ज्ञानी कोई होते हैं, अज्ञानी को नहीं होते, कॉमन बात, कोई इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अज्ञानी को होते ही नहीं क्योंकि उसको शुद्ध ज्ञान, सम्यक शुद्ध ज्ञान नहीं होता, इसलिए सम्यक नहीं होते। मोक्ष मार्ग में तो सम्यक नहीं की बात, अज्ञानी पर भी नए लागू होते कि नहीं होते, उसके ज्ञान में नए नहीं है, लेकिन ज्ञानी उसे देखते हैं तो उसे भी तकाली ज्ञान भगवान आत्मा देखते हैं। तो ज्ञानी अगर किसी को सब जीवों को सिद्ध सम देखते हैं तो ज्ञानी के परिणाम में शुद्ध नहीं प्रकट होते। द्रव संग्रह में लिखा है सर्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध ने से सभी जीव शुद्ध है, तो सभी जीव शुद्ध के उनको शुद्ध नय है ही नहीं। शुद्ध नय तो केवल ज्ञानियों को है, केवल ज्ञानी माने केवल मात्र ज्ञानियों को, समझ में आया ना, केवल ज्ञानी को भी नहीं है, केवलियों को और अज्ञानी को भी नहीं है। तो सभी शुद्धा शुद्ध नया, तो सब में शुद्ध नय कैसे लागू हो गया? अरे नय रूप परणमन छाये ज्ञान में नहीं होता और मिथ्या ज्ञान में नहीं होता। क्या बोला? छाये ज्ञान माने केवली को नहीं होता और मिथ्या ज्ञान में नहीं होता। फिर नए का विषय जो सम्यक ज्ञानी बनाते हैं वो तो उनको भी अपने नए का विषय बना सकते हैं ना। तो इस न्याय से वो अज्ञानी को ईश्वर ने सच्चा नहीं है, लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि इसके अंदर पराधीन होने की स्वयं की योग्यता है, उससे ये पराधीन हुआ है, कर्म ने इसे अधीन नहीं किया। गजब है, पराधीन होने के धर्म में भी स्वाधीनता निकालना। ये गुरुदेव जैसे विलक्षण पुरुषों के अलावा और कौन ये कमाल कर सकता है? अनीश्वर, अनीश्वर मतलब ईश्वर नहीं। जैसे हमारे यहाँ काल द्रव्य की चर्चा चली अभी 139-38 गाथा में प्रवचन साथ में, तो जैसे नाचार्य देव ने काल द्रव्य को अप्रदेशी लिखा और उसका हेतु क्या दिया, दूसरा कोई प्रदेश नहीं है इसलिए अप्रदेशी, मतलब एक प्रदेश तो है ही है, ऐसे दूसरे को ईश्वर नहीं बनाया तो क्या हो गया, अनीश्वर हो गया। इसमें आए स्वाधीनता का द्योतक है। तो इस प्रकार ये सरल है, लेकिन पराधीन होने के भी योग्यता हमें स्वयं है, ये हम ध्यान रखेंगे तो परद्रव्य के प्रति राग द्वेष नहीं होंगे। लोग कहते ना वो हम लोग गवर्नमेंट साल में पढ़ते थे कि वो भूख कैसे लगती है, एक तो वो असाता कर्म की उदीर्णा से,
आहार दंश
और आहार दंश में हमारी खाने की इच्छा तो नहीं थी, अब तुमने लाके रख ही दिया तो क्या करें, खाने की इच्छा हो गई। तो ऐसी पराधीनता हमारी पर्याय के स्वभाव में पड़ी। इसी स्टाइल का एक और जोड़ा आगे है, एक गुणी ने और एक अगुणी ने। देखो अपन पढ़ते, आत्मद्रव्य गुणी ने से शिक्षक द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले कुमार के समान गुण ग्राही। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं तो वो ग्रहण कर रहे हैं, विषय को समझ रहे हैं अथवा जो भी उनको प्रेरणा दे रहे हैं उसे वो ग्रहण कर रहे हैं। तो किसी की सलाह, किसी का उपदेश हम माने, ऐसी योग्यता हम में है ना। अगर मान लो ऐसी योग्यता नहीं होती तो ये देश ना लब्धी, ये ग्रंथ रचना, ये गुरु का उपदेश, ये भी सब व्यर्थ हो जाता। जब कोई किसी की बात मान ही नहीं सकता है, योग्यता ही नहीं है, तो उपदेश देने का क्या फायदा। तो उदाहरण दिया वो विद्यार्थियों के पढ़ने, ये ध्यान देना हर एक नए के लिए अलग अलग उदाहरण है हर जोड़े में। सिद्धांत में तो एक ही आत्मा में दोनों बातें लागू होती, ख्याल में आया, लेकिन उदाहरण में जैसे उस अनीश्वर ने के लिए शेर का उदाहरण दे दिया, ईश्वर ने के लिए वो पराधीन बालक का उदाहरण दे दिया, तो गुणी ने तो जे हो गया और अगुणी ने क्या है, अगुणी ने से शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले कुमार को, वो वही उदाहरण में, लेकिन एक आदमी और खड़ा हो गया, दूर से कोई व्यक्ति देख रहा है कि छात्रों को अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वो मात्र जान रहा है कि यहाँ इनकी पढ़ाई चल रही है, वो सुनता भी है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, मगर क्योंकि वो छात्र नहीं है समझ में आया ना, उसे उस पढ़ाई को ग्रहण करने का कोई विकल्प नहीं है, तो वो ऊपर से ही चला जाता है। ठीक है, हमने ऐसा बताया था, लेकिन वो उसे स्वयं ग्रहण नहीं करता। तो किसी की बात माने ऐसी योग्यता भी हम में है, और किसी की बात नहीं माने ऐसी योग्यता भी हम ही में है। तो नहीं मानने वाली योग्यता अच्छी है कि बुरी? अरे कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। अगुणी ने का जो धर्म है, अगुणी नाम का, उसका प्रताप ये है कि दुनिया में इतने सब लूटने वाले निमित्त की अपेक्षा पूर्व कुदेव सब घूमते हैं और नाना प्रकार की मिथ्याएं कल्पनाएं करते हैं कि तुमको ऐसी माला जपोगे ऐसा हो जाएगा कि नीला पहन लो, पीला पहन लो, लाल डोरे में ऐसा दुनिया भर की, समझ में आया ना। तो आप उसे नहीं माने ऐसी योग्यता है। अयोग्यता नहीं होती तो हम सबकी बात मानने के लिए मजबूर होते, समझ में आया। और वो गुणी नहीं वाली योग्यता नहीं होती तो हम सदगुरु का उपदेश भी ग्रहण नहीं कर पाते। गजब बात है, बहुत सुंदर संधि बिठा ली है इसमें। इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं लिए, दो ही पॉइंट लिए हैं उस जो मैंने कह दिए। अब एक जरा सावधानी से समझने वाला एक नय है, कर्तृनय और अकर्तृनय। अपन को ऐसा लगता है कि समय सार में तो आत्मा को अकर्ता अकर्ते बताया, लेकिन आप कर्ता कर्म अधिकार में भी, मैं तो समझता हूँ एक शिविर कर्ता कर्म अधिकार का लगाया जाए। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं दिमाग, आप गिन के कैलकुलेशन करके लाएंगे। अगर हमारे राकेश जी को ये दिया जाए विषय कर्ता कर्म अधिकार का, कितनी गाथाओं में आत्मा को राग का अकर्ता कहा है और कितनी में राग का कर्ता कह के परद्रव्य का अकर्ता कहा है, और उसी कर्ता कर्म अधिकार में व्यवहार ने से कितनी गाथाओं में आत्मा को घटपट रथ आदि का भी कर्ता कहा है। जुदा जुदा व्यवहार में लागू पड़ता है। तो यहाँ कर्तृनय और अकर्तृनय में हम देखें कौन सी विवक्षा वाली योग्यता आत्मा में दोनों तरह की है। आत्मद्रव्य कर्तृनय से रंगरेज के समान रागादि परिणाम का कर्ता है। द्रव्य को कर्ता कह रहे, समझ में आया? घबराना नहीं। देखो द्रव्य के दो पड़के हैं, एक अपरिणामी और एक परिणामी। तो जब कर्ता बताते हैं तो कर्ता परिणामी द्रव, कौन सा द्रव है कर्ता? परिणामी द्रव। परिणमन करने की योग्यता होने से वो द्रव्य अपने परिणामों का कर्ता है। लेकिन इसमें तो रागादि की बात लिखी है सर, रागादि अथवा वितरागता दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध शुद्ध। जो रंगरेज माने जो कपड़ा रंगने वाला है, जो कपड़े को कलर देता है, जिस प्रकार उसने कपड़े में कलर देकर उसे रंगीन बना दिया, उसी तरह आत्मा ने अपने परिणामों में चित्र विचित्र कलर ग्रहण करके परिणामों को रंगीन बना दिया। दूसरे ने नहीं बनाया, कर्मों ने नहीं बनाया, ख्याल में आया? रागादि परिणाम का करता है। और अकर्तृनय से अपने कार्य में प्रवृत्त, वही गुणीनय और अगुणीनय की भांति अपने कार्य में प्रवृत्त रंगरेज को देखने वाले पुरुष की भांति केवल साक्षी है। अकर्तृनय से केवल साक्षी है और कर्तृनय से करता है। और हमें कर्तृनय वाला जो प्रयोग है वो द्रव्य में होता है कि पर्याय में होता है, ज्ञानी को होता है कि अज्ञानी को होता है, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं। वो हमें सावधानी से क्या बोलते, ज्ञान ज्या जे जे योग्य छे ता समझू ते, इस न्याय से वो सब समझने चाहिए। थोड़ी की चर्चा भी यहाँ की है। देखिए, आत्मा अपने रागादि परिणामों को स्वयं अपनी योग्यता से करे, जिसे अपन तत्समय की योग्यता कहते हैं, ख्याल में आया? आप देखिए, विकार रूप होने की जो जो क्षमता है उसे तो योग्यता नाम देते, और स्वभाव रूप परिणाम करने की जो क्षमता है उसे शक्ति नाम देते। गुरुदेव ने ऐसा वर्गीकरण किया शक्तियों के प्रकरण में, कहते हैं आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो राग उत्पन्न करे, क्योंकि अध्यात्म में राग कोई शक्ति का प्रतीक नहीं है, वो तो कमजोरी है। एक बार दादा ने अपने प्रवचन में राग शक्ति है वो तो अपन भाषा भी ऐसी बोलते, ज्ञानी को वेद विज्ञान होने पर भी कमजोरी के कारण जो राग आता है, ख्याल में आया ना, ऐसा विशेषण लगाते ना कमजोरी के कारण, तो वो शक्ति से आया कि कमजोरी से आया। तो आध्यात्मिक विवक्षा में जहाँ राग परम अनिष्ट तत्व है, कैसा है तो वहां वो कमजोरी का प्रतीक। लेकिन वस्तु की परिणमन व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो उस उतना राग रूप परिणमित होने की योग्यता उस पर्याय में है, ख्याल में आए। तो जिसे कर्तृ धर्म कहा गया है, धर्म है वो, उस पर्याय का स्वभाव है। पुत्रकाली स्वभाव की तुलना में कहें तो विभाव स्वभाव, विकारी भाव औपाधिक भाव है, तो उस पर्याय की स्वयं की योग्यता से हुआ है। उसी समय उसका स्वभाव रागादि रूप नहीं होने की योग्यता भी रखता है, इसको बल शक्ति भी कह सकते। पर्याय में राग है और द्रव्य स्वभाव उस राग से बिल्कुल अछूता है। अरे द्रव्य स्वभाव छायक आदि भावों से भी अछूता रह सकता है, वे पूजा में आता है ना, जहाँ छायक भाव भी भिन्न दिखे तो अन्य भाव की कौन कथा, गजब बोलो, छायक भाव भी भिन्न दिखे तो अन्य भाव की कौन कथा। तो जब छायक भाव को भी ज्ञानी अपने त्रिकाली स्वभाव से भिन्न देखते हैं तो रागादि की क्या बात करना, तो वो रागादि रूप क्यों नहीं परिणमता, क्योंकि आत्मा में कोई ऐसा गुण या शक्ति है ही नहीं कि रागादि रूप परिणमे, एक बात। लेकिन योग्यता के हिसाब से तो स्वयं परिणमित हुआ है, तो भी उसका जो स्वभाव है वो राग रहित ही है, इसे अकर्तृ धर्म से कहा गया है। और इन दोनों धर्मों को जानने वाला ज्ञान कर्तृ नय और अकर्तृ नय कहला, इसमें कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं, सिंपल बात है। अभी तो द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, पर्याय में राग होने की योग्यता है उसका नाम कर्तृ धर्म है, उस काल में भी द्रव्य कभी रागी होता नहीं है, इसलिए वो द्रव्य गति योग्यता कौन सी है, अकर्तृ धर्म वाली। अब देखना समय सार में रागादि में एकत्व बुद्धि को कर्तृत्व कहा है। समय सार में कर्ता और भोक्ता की जो व्याख्या है उसका आधार ही अलग टाइप का है। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने जगह जगह पर भावार्थ में इस बात का खुलासा किया है, कहीं कहीं तो पूरी का गुणस्थान परपाटी के हिसाब से समझना, एकांत नहीं पकड़ना। वास्तव में मैं भावार्थ लिखने की शैली में अगर मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो पंडित जयचंद जी छावड़ा ने किया। जैसे टीकाकार में सर्वश्रेष्ठ अमृतचंद्र आचार्य हमारे सामने खड़े होते हैं, वैसे भावार्थ लिखने में पंडित जयचंद जी छावड़ा। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर अपन को किसी ग्रंथ का भावार्थ लिखना हो तो कम से कम 10 दफे जयचंद जी छावड़ा के भावार्थ पढ़ना चाहिए। क्या बात गाथा में है, क्या बात टीका में है, उसका भी खुलासा करेंगे, योग्य होगा तो नए विवक्षा भी बताएंगे, और वहां समझने में कहां भूल हो सकती है तो उसको भी बताएंगे। यहाँ ऐसा मत समझना, जिन मत तो स्यादवाद रूप है, ये सब सावधानियां वो उसमें भावार्थ में देते थे। तो समय साल में रागादि में एकत्व बुद्धि को कर्तृत्व का, एकता बुद्धि है जिसको तो वो करता है। एकता बुद्धि माने क्या, अपने चैतन्य स्वभाव का तो अनुभव है नहीं अज्ञान दशा में, तो वर्तमान में जो परिणाम होते हैं राग द्वेष सुख दुख पुण्य पाप, वो अपने को उस रूप ही अनुभव करता है, अपने स्वरूप को वैसा अनुभव करता है, अपने त्रिकाली स्वभाव को, अपनी सत्ता को, अपने स्वरूप को, इसका नाम है एकत्व बुद्धि। लोक में तो ऐसा कि मकान मेरा है तो एकत्व बुद्धि बोलेंगे, अपने मकान को अपना मानते एकत्व बुद्धि, और राग मेरा है ऐसा कदाचित किसी को विकल्प खड़ा नहीं हो, लेकिन राग द्वेष उत्पन्न हुए और अपने को वो राग द्वेष रूप ही अनुभव करता हुआ प्रणमता, तो ये समय साल की शैली में ये एकत्व बुद्धि की परिभाषा है। तो जिसको ये एकत्व बुद्धि है वो करता है, और जहां एकत्व बुद्धि निकली और भेद विज्ञान हुआ तो वो जीव अकर्ता हुआ। और वो सेठका वाली गाथाओं के भावार्थ में तो साक्षात अकर्ता, ख्याल में आए ना, वो आगे की कथाएं हैं सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, केवल ज्ञानी होने पर साक्षात अकर्ता, ऐसा उसने प्रयोग किया। परंतु यहाँ यह परिणमति सकर्ता, यहाँ कौन सी परिभाषा है, कर्तृधर्म में जो परिणमता है वो करता। इस परिभाषा के अनुसार ज्ञानी को भी राग का कर्ता बताया जा रहा है। कॉमन बात कही उन्हें तो आत्मा, ख्याल में है ना, तो जिसमें राग है कर्तृ, जिस पर्याय में राग रूप परिणमने की योग्यता यानी धर्म है, वो जीव उस राग का करता है। वेद ज्ञान है कि नहीं है वो शैली अलग है, ख्याल में आए ना। लेकिन राग वास्तव में देखो आप, एक तो बुद्धि वाली बात तो एक श्रद्धा की प्रधानता वाली बात है, अभिप्राय की प्रधानता वाली बात है, अन्यथा ज्ञानी को जो राग होता है उसका कर्ता कर्म है। कहते जरूर है मोह के उदय बस पर वर्णति हेतु मोह नाम नो अनुभावात, है ना अपना कलश। लेकिन क्या वो द्रव्य कर्म का कार्य है? अगर वो द्रव्य कर्म ज्ञानी को राग करा सकता है तो अज्ञानी को द्रव्य कर्म क्यों नहीं करा सकता? तो अज्ञानी ने किया वो तो अज्ञानी की भूल, और ज्ञानी ने किया वो द्रव्य कर्म ने कराया, ज्ञानी माफ। समझ में आए, ऐसा अन्याय कैसे हो सकता है? इसलिए वो भी उसकी पर्याय की तत्समय की योग्यता से वो सब परिणाम होते। भेद ज्ञान होने से अभी ज्ञानी में कितनी अपेक्षाएं, ज्ञानी किन अपेक्षाओं से करता है और किन अपेक्षाओं से अकर्ता है, तो अकर्ता पने की दो अपेक्षाएं ज्ञानी, अज्ञानी में एक अपेक्षा, ज्ञानी में दो अपेक्षाएं, काय की राग आदि के अकर्तत्व की। त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए, भले अज्ञानी के पास वो दृष्टि नहीं है, हमें तो है वो दृष्टि, ज्ञानी को तो है, तो ज्ञानी भी अज्ञानी को अगर शुद्ध न्याय से देखेंगे, परम शुद्ध न्याय के विषय भूत भगवान आत्मा को देखेंगे, तो उसमें राग है ही नहीं, तो राग के करने नहीं करने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। और जो निष्क्रिय ध्रुव तत्व है वो राग रूप परिणमता ही नहीं है, ख्याल में आए ना, जब परिणम ही नहीं तो यह परिणमति सब करता वाला नियम निष्क्रिय ध्रुव तत्व के साथ तो नहीं लगा, इसलिए वो अकर्ता है। न परिणमति सो अकर्ता, ख्याल में आए ना, तो ध्रुव नहीं परिणमा तो वो बात ज्ञानी और अज्ञानी दोनों पे एक सर की लागू होती है। फिर से सुनना, त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा, और वेदांत संग्रह में बहुत अच्छा प्रयोग है, वहां उन्हें पूछा गया, हम तो आपसे पूछते हैं कि शुद्ध निश्चय से राग आदि किसके हैं, ऐसा जवाब दिया है कि देखो जैसे स्त्री और पुरुष के संयोग के बिना पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती, हल्दी और चूने के संयोग के बिना लाल रंग की उत्पत्ति नहीं होती, वैसे शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो ज्ञानी जीव को राग आदि होते ही नहीं है, तो हम क्या जवाब दे रहे कि शुद्ध निश्चय से किसके, ऐसा ग्रंथ संग्रह में आया। तो अकर्ता स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, उसकी अपेक्षा से, उसकी मुख्यता से विचार करें। एक बात और समझना, अपेक्षा से लोग जरूरत से ज्यादा घबराते हैं। ये मैं कई दफे यहां कहता हूं, उल्लास भाई ने तो सुनी होगी, हमें ऐसा लगता है अपेक्षा माने पराधीनता, उसके अधीन हो गए हम, ख्याल में आया। सापेक्ष कथा ने माने, सापेक्षता माने पराधीनता नहीं होता है, सापेक्षता माने एक धर्म को मुख करना। ये उसमें लिखा धवला में, नए किसे कहते हैं, अभिप्राय को नए कहते, अभिप्राय इत्यस्य को अर्थ, कि वस्तु के अनंत धर्मों में एक धर्म को मुख करना, शेष को गौण करना, इसको अभिप्राय कहते हैं। वो दृष्टि श्रद्धा वाला अभिप्राय जुदा है और नए वाला अभिप्राय जुदा है, वो शुद्ध ज्ञानात्मक है। क्या कहा वो है ना, प्रमेय कमल मातंग में परिभाषा, अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुवंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नया, ज्ञाता के अभिप्राय को, तो अभिप्राय क्या, ये एक धर्म को मुख्य करना और बाकी को गौण करना, जिसमें कोई पराधीनता आती है नहीं, हम तो निरपेक्ष है, निरपेक्ष है। अरे निरपेक्ष की दृष्टि से देखना भी एक अपेक्षा खड़ी हो गई। अभी छठवीं गाथा के प्रवचन में परसों गुरुदेव ने कहा था, मूल टीका में शब्द है, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए, पर्याय की अपेक्षा देखा जाए तो क्षीर और नीर के समान कर्म पुद्गलों से आत्मा बना हुआ है। लेकिन उसी समय उसी जीव को द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो स्वभाव तो निरपेक्ष है, यानी उस पर से अप्रभावित है, लेकिन हम स्वभाव की तरफ से वस्तु को देखें तो हमारे ज्ञान में अपेक्षा खड़ी हो गई। और अपेक्षा अपेक्षा कोई दोष नहीं है, वो सम्यक शुद्ध ज्ञान का गुण है, उसका स्वभाव है, उसको ही नए कहते हैं। ख्याल में आया ना, ये मैंने थोड़ा उसमें चर्चा की है नए रहस्य में। तो देखो, वेद ज्ञान होने से वो अकर्ता तो है ही। दो अपेक्षा ज्ञानी में, एक त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा और दूसरे दृष्टि की अपेक्षा। दृष्टि स्वभाव पर पड़ी हुई है। पड़ी हुई है माने क्या? देखो, अपन लोगों की आदत हो गई है ये शब्दों में खेलने की। हम लोग जरा ज्यादा खेलते, ख्याल में आए ना। तो हम उस शब्द को वैसे ही समझ लो, सुन लिया और उसी हिसाब से व्याख्या हो जाती। कोशिश ये होने चाहिए कि हर चीज का इसका क्या मतलब। ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव पर पड़ी, राग आदि पर दृष्टि नहीं, क्या मतलब है इसका। वो लड़ुआ लाड़ू खाने वाला उदाहरण दिया था कि भजिया पर भी दृष्टि तो पड़ती होगी उसकी। दृष्टि माने उसकी नजर तो पड़ती होगी, मगर यहाँ दृष्टि माने अहम पना रूप श्रद्धा का परिणमन। श्रद्धा के लिए दृष्टि शब्द का प्रयोग करना वो मैं समझता हूँ गुरुदेव की डिक्शनरी का एक अलग ही शब्द है। वैसे तो इस दृष्टि से देखो तो द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखो, यानी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा दे, वहां दृष्टि का अर्थ ज्ञान। नय के साथ दृष्टि शब्द का प्रयोग है। जेड़ नय दृष्टि विहूणा तारण वत्थु साहब ओलद्धि, जिनके पास नए दृष्टि नहीं है तो कौन सी श्रद्धा की बात है। नयों के द्वारा वस्तु को देखने की समझ, वैसा शुद्ध ज्ञान जिनके पास नहीं है। तो नए के साथ भी दृष्टि शब्द का प्रयोग, अपेक्षा के लिए भी दृष्टि शब्द का प्रयोग आता है, और अहमपना जो निर्विकल्प प्रतीति है उसके लिए भी दृष्टि शब्द का प्रयोग आया। टोडर मांझी ने दृष्टि शब्द का प्रयोग श्रद्धा के अर्थ में कहीं नहीं किया। भाई साहब, उन्होंने अभिप्राय प्रतीति अध्यवसान, अध्यवसान तो समय सार में बहुत आता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। अभिप्राय और प्रतीति, थोड़ा नजदीक प्रतीति शब्द का बहुत प्रयोग करते, और उन्होंने श्रद्धा की ज्ञान प्रदान बहुत सुंदर परिभाषा दी। दो जगह है, चौथे अधिकार में भी है और नौवे अधिकार में भी है। और इसलिए तो नौ तत्व की प्रतीति को सम्यक दर्शन हो जाता है। कैसे? ऐसा ही है अन्यथा नहीं, ऐसा जो प्रतीति भाव है सो श्रद्धा। इस श्रद्धा की परिभाषा प्रतीति के रूप में, और ज्ञान ऐसा है और अन्यथा नहीं, ये एक्सरसाइज कौन करेगा? श्रद्धा के ज्ञान। और कहीं कहीं तीनों परिणमन ज्ञान में लागू करके भूले जाते। ज्ञान में ऐसा प्रतीति भाव होता है, ज्ञान में जानना तो होता ही है, ज्ञान में प्रतीति भाव उस शब्द को सपोर्ट करके लिया। ज्ञान लीन हुआ, लीनता कौन करता है? चारित्र। लेकिन चारित्र तो लीनता का नाम है, वो की किसने? ज्ञान उपयोग ध्यान में आए ना। इसलिए भैया वो मैं तो कहता हूँ, लोग सुनते नहीं है। दो जगह लिखाना चाहिए सारे हिंदुस्तान में, वक्ता के सिर पे और वक्ता के सामने। कौन सा सूत्र? ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे ता समझ मुते। दो जगह क्यों? ताकि श्रोता भी देखें और वक्ता भी देखें। ये तो कोने में लिख गया। तो देखो, ज्ञानी दृष्टि की अपेक्षा, दृष्टि माने एकत्व बुद्धि नहीं है, अपना नहीं मानते हैं, अपने स्वरूप को उससे भिन्न अनुभव करते। ध्यान में आया ना, लागादी भावों का अकर्ता है। और ज्ञान की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा, ज्ञान में दोनों अपेक्षाएं, ज्ञान में एक कर्त्री ने और अकर्त्री ने वास्तव में एक इसमें प्रकट होते, ज्ञान में प्रकट होते। ख्याल में आए? तो वेद ज्ञान की अपेक्षा भी वो लागादी का अकर्ता है, तो वो नए भी ज्ञान में प्रकट होगा। और परिणमा है इसलिए उसका कर्ता मैं ही हूँ, परद्रव्य उसका कर्ता नहीं है। तो इस हिसाब से ज्ञानी रागादि के कर्ता है, कर्ता भी है और अकर्ता भी है। दादा एक और अपेक्षा लेते, वो मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी कम जस्ती है, लेकिन मैं गंभीरता से बहुत विचार कर, चार पांच दिन पहले मैंने उनके जी जागरण पे मैंने वही अपेक्षा सुनी थी कि उस समय साल में है उसमें बड़ा मतलब प्रबल प्रमाण उसका। कि अनंतानबंदी इत्यादि राग वही राग कहलाता है समय साल, और जो अनंतानबंदी नहीं है तो राग ही नहीं है, तो जो बाकी का राग है उसको किया कौन, और जो अनंत संसार का कारण है वो राग है ही नहीं, तो ज्ञानी राग किया करता हो ही गए। बाकी वाला राग को हम मानते ही नहीं राग, और जो असली है जो अनंत संसार का कारण है वो ज्ञानी की परिणति में है ही नहीं, इसलिए ज्ञानी रागादि के अकर्ता। ये भी एक न्याय है, इसमें भी बड़ा मजा आता है इसको इस दृष्टि से विचार करने। मुझे आज इसमें पे ज्यादा समय देना था,
गुरुदेव भी ऐसा अर्थ करते हैं,
ऐसा अर्थ करते, इसलिए तो सब डेवलप हुआ ना। दिक्कत क्या, सुविधा ये है कि गुरुदेव ने सब अर्थ किए। अज्ञानी को भी अब देखना, ऊपर मैंने ज्ञानी पे लगाया, नीचे अज्ञानी पे लगाता हूँ। अज्ञानी को भी भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से करता अकर्ता देखा जा सकता है, अज्ञानी स्वयं नहीं देख सकता, उसके पास तो कर्तृत्व भी नहीं है अकर्तृत्व भी नहीं है, उसके पास तो अंधकार मात्र है, ख्याल में है ना। यद्यपि अज्ञानी को नये नहीं होते तथापि ज्ञानी उसे नए दृष्टि से जानते हैं। रागादि रूप वह रागादि रूप परिणमता है, एकत्व बुद्धि भी कर रहा है, अतः श्रद्धा और ज्ञान दोनों अपेक्षाओं से रागादि का करता है। कौन? अज्ञानी। श्रद्धा की अपेक्षा माने एकत्व तो बुद्धि है इसलिए, ज्ञान की अपेक्षा माने यह परिणमति सा करता, उसको ज्ञान में ले लिया। किंतु उसी समय ये प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत है इसमें, शुद्ध नय की दृष्टि से वह रागादि को छूता भी नहीं है, ख्याल में है ना, इसलिए वो भी अकर्ता। देखो अगर अकर्ता स्वभाव अज्ञानी के द्रव्य में या उसके अस्तित्व में या उसके स्वरूप में ना हो गए तो वो किसके अवलंबन से पर्याय में अकर्ता पने की अनुभूति करेगा, ख्याल में आया ना। तो अकर्ता स्वभाव की अपेक्षा देखो, जैसा कि जैसे न चाह देव ने निष्क्रिय पारणामी कर, देखो जो 320 गाथा और उसकी जैसे ना चार की टीका, जैसे दृष्टि ख्याल में आया ना पदार्थों को जानती मात्र है, अग्नि को इसको उसको भोगती नहीं है, करती नहीं है और भोगती नहीं, वैसे आत्मा भी, आत्मा की चर्चा है कि ज्ञानी, और बंद को उदय को निद्रा को किसी को भी ज्ञानी करते आत्मा करता नहीं है और भोगता नहीं, तो ये सिद्धांत अज्ञानी पे भी लागू होता है कि नहीं। वहां दृष्टि का अर्थ सम्यक दृष्टि या श्रद्धा की पर्याय की बात नहीं है, वो तो आत्मा को दृष्टि के समान अकर्ता और अभोक्ता बताया। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में यही मैं कहने वाला था, 308 गाथा के पहले ही हेडिंग में अतः आत्मना अकर्तत्वम प्रतिपादयति, उसका अकर्तापना दिखाते हैं। तो कर्तापना अकर्तापना ये दोनों स्वभाव प्रत्येक जीव में है, ख्याल में आया ना। अब अज्ञानी को कुछ भी नहीं पता, उसे तो अकर्ता भी नहीं पता कर्ता भी नहीं पता। इसमें ये लिखा देखो, समय सार गाथा 320 में आत्मा को आंख के समान राग आदि सभी पर्यायों का अकर्ता अथवा मात्र ज्ञाता कहा, गजब है। अब अज्ञानी को तो ज्ञातापना का प्रणमन है नहीं, भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञातापने का परिणमन प्रकट नहीं है, उसके स्वरूप में जो ज्ञान स्वभाव की धारा चल रही है वो ही उसका ज्ञातापना। ज्ञाता स्वभाव की धारा कभी खंडित नहीं होती स्वभाव की। देखो अवणी ने मैं आत्मा को मात्र उपदेश का साक्षी कहा था, और यहाँ अपने में होने वाले राग आदि का साक्षी कहा गया है, गजब बात। ये वास्तव में ये परिणति ही कोई अजब गजब की है, अपने में राग हो रहा है, अपने में द्वेष जो हो रहा है उसकी बात, ज्ञानी की बात। अपने में विषय वांछा भी होती है, यथा योग गुण स्थानों के अनुसार अशुभ भाव भी आते हैं, शुभ भाव भी आते हैं, तद्रूप परिणमता भी है, तज्जन सुख दुख भी तत्काल भोगता है, ख्याल में आए ना। लेकिन फिर भी उसकी भेद ज्ञान की दृष्टि ऐसी अजब गजब की है कि वो पर्याय में द्रव्य अकर्ता स्वभाव साक्षी है वो तो बात अलग, लेकिन उस साक्षी स्वभाव के बल से अपनी परिणति में भी सब पर्यायों का साक्षी मात्र रहेगा। यहाँ मुख्यतः रागाती की है तो रागाती बात का बात करें। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है भैया, बहुत सोचने लायक। सुख दुख हो रहा है क्या? इसके लिए देखो पुराने कवियों की कितनी प्रबल पैनी आध्यात्मिक दृष्टि सैद्धांतिक दृष्टि गजब की थी और कितने रसमय काव्यों में उन्होंने उसको उतार दिया। जैसे दौलत राम जी का प्रसिद्ध भजन है, बाहर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटा घटी। ये क्या है? नार की कृत दुख बाहर भोगता है माने शरीर में भोगता है, तो दुख काय में होता है? अभी एक यहाँ निर्जराधिकार के प्रवचन चलते कलशामृत में, निर्जराधिकार के प्रवचन डेली रूटीन में चलते हैं गुरुदेव के। एक बार मेरा ध्यान गया कि गुरुदेव ने दुख की बात की कि जीव को दुख होता है ये होता है, तो एक श्रोता बोला दुख तो पुद्गल की पर्याय। तो गुरुदेव ने थोड़ा सा कड़क होकर होने की धूम होने की धूम आ जीवनी चारित्र गुणनी आनंद गुणनी विपरीत पर्याय दुख जीव भोगता। ये गुरुदेव के हाजिरी में एक प्रकरण ये भी चल गया था जो लोग हैं हमारे वरिष्ठ साथी सबको पता है कि एक धारा ऐसी चल गई थी कि ज्ञानी को दुख होते ही नहीं, उसके विरुद्ध गुरुदेव ये सिद्ध करते थे नहीं जितना राग है उतना ज्ञानी को दुख। अरे दुख नहीं है तो अनंत सुख होना चाहिए ना भाई, सीधी बात है, जितनी वितरागता है उतना तो सुख है ही, और राग भी है तो उसका तो दुख है ही नहीं, तो फिर अनंत सुख में कमी क्यों है? समझ में आया ना? ऐसे बहुत से न्याय वो इस संबंध में प्रस्तुत करते थे। तो ये रागादि होना, रागादि कृत सुख दुख होना, तो भी जीव उसका साक्षी मात्र जान लिया कि मुझे राग हुआ है, गजब बात। कैसी भेद ज्ञान की पैनी दृष्टि है वो, मुझे माने पर्यायगत स्वरूप में, बस पर्याय जितनी मर्यादा उसमें, फिर भी अपने को रागादि से भिन्न देखना, इतनी मेहनत नहीं करे, इतना अंतर्मुखी पुरुषार्थ नहीं होवे तो धर्म काय का होवे? फिर निसंबर निद्रा हो कैसे, फिर इतनी आनंद आए कैसे? अगर इस कला का वो समझ लो कलाकार ना बने तो उसका स्वभाव तो सभी पदार्थों को साक्षी भाव से मात्र जानने का ही है। तो अकर्ता जैसे रागादि का अकर्ता है साक्षी है, और अभोक्ता जैसे सुख दुख का साक्षी, बाद में भोक्तत्व और अभोक्तत्व ने भी लिया है। देखो ये भी एक ही जैसे हैं इसलिए मैं ये भी लेता हूँ, है ना 5 मिनट। आत्मद्रव्य भोक्तत्व जैसे उदाहरण बड़े जोरदार दिए आचार्य, गजब हो गया। हितकारी अहितकारी अन्न को खाने वाले रोगी के समान, राके जी कह रहे ना 3 बजे रात में पेट में दर्द हुआ हितकारी अहितकारी अन्न को खाने वाले रोगी के समान सुख दुख दोनों लिए। मान लो रोगी समझदार हुए तो अहितकारी अन्न नहीं खाएगा, कुपथ सेवन नहीं करेगा, और हल्का सुपाच्य भोजन जैसा वैद्य ने बताया है वैसा खाएगा तो हितकारी, तो रोग बढ़ेगा नहीं और बल्कि घटेगा। औषधि है तो वो रोग को घटाएगी, और जो पथ्य सेवन है वो रोग को बढ़ने नहीं देगा। समझ में आया ना? तो वो थोड़ा साता का अनुभव करेगा, सुख का अनुभव करेगा। कौन? समझदार रोगी। समझ में आया ना? और जो अति विषयाभिलाषी होगा, विषयों का तीव्र गुलाम, अरे जो होगा सो देखा जाएगा, सब क्रमबद्ध में नक्की है ऐसे ऐसे भी क्रमबद्ध का मिसयूज करने वाले मिलते हैं, हैं? तो क्रमबद्ध में मान लो अपत कुपथ सेवन करना नक्की है, तो जब पेट दर्द से तड़पोगे उस समय क्रमबद्ध को याद करना, तो उस क्रम में फिर वो ही है। ऐसा एक प्रकरण आया था एक प्रवचन में, मैंने सुना था, देखो साहब जो हमको राग द्वेष ये सब होते हैं ना, सब सब ये सब क्रमबद्ध में ये सब आने ही वाले, हम तो उसे दूर कर ही नहीं सकते। तो तुम्हारी क्रमबद्ध में ये नरक और त्रंच गतियां भी सुनिश्चित हैं, ख्याल में आए ना? वो भी पूरी धारा क्रमबद्ध है, अकेली एक तुम्हारी मर्जी वाली क्रमबद्ध नहीं है तो हितकारी अहितकारी अन्न को खाने वाले रोगी के समान सुख दुख आदि का भोगता है। देखो जब सुख दुख भी परिणाम है, क्या राग द्वेष भी जीव के परिणाम है और सुख दुख भी जीव के परिणाम है,
तो भी उनमें कारण कार्यपना भी लगाते, राग आदि भाव कारण है और दुख उसका फल है, एक ही समय फल में आए ना। वैसे तो गुण जुदे जुदे हैं लेकिन दोनों आनुषांगिक हैं, जैसे ज्ञान और दर्शन और वीर वो एक लेवल पे चलते हैं, ऐसे राग द्वेष आदि भाव और सुख दुख वो एक लेवल पे चलते हैं। बाहर का संयोग कैसा भी हो, राग कम जितना, जैसे यूं समझो आप एक सर्वा सिद्धि का अहमिंद्र और एक सातवें नरक का नारकी, दोनों सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि ले रहे अपन, कौन दुखी हो कौन सुखी, कौन कम सुखी हो कौन ज्यादा सुखी, तो वो राग द्वेष का सुख दुख का हिसाब समझ में आएगा। सोचो विचारो बाद में बताना क्या भी बता। अरे बहुत से लोग देवलाली वालों को तो पता ही होगा सबको, कई बार ये तर्क आते हैं स्वाध्याय में, जितनी कसाय का अभाव हुआ है जीव को उतना सुख है, सातवें नरक का नारकी उतने ही सुखी है जितना वो सर्वा सिद्धि का अहमिंद्र, वो ज्यादा सुखी नहीं है। हमारे दिमाग में चित्र बन रहे, आराम से बैठे हैं, शुक्ल लेस्या है, मंद कसाय है, इधर संकलेश परिणाम है, उसका नाटक अलग है, लेस्याओं का नाटक जो होता है वो अलग होता है, सुख दुख का कसाय से साथ संबंध है, समझ में आने। लेस्या और कसाय वाला प्रकरण भी बहुत गहराई से विचार करने लायक है। ये देखो मिथ्या दृष्टि को भी शुक्ल लेस्या होती है और नरक में सम्यक दृष्टि को भी कृष्ण लेस्या होती है, हैं? तो सुख दुख राग द्वेष ये एक लेवल पे चलते। और देखना ये दूसरा पॉइंट पढ़ लो, कर्तृत्व नये और अकर्तृत्व नये में घटित होने वाली सभी विवक्षाएं यहाँ भी समझ लेना चाहिए। वो ज्ञानी में लगता है या अज्ञानी में लगता है, किस अपेक्षा किस में लगता है, क्योंकि कर्तापन और भोक्तापन एक साथ रहते हैं। वो उदाहरण में क्या दिया, अभोक्तत्व नय का, हितकारी अहितकारी अन्न को खाने वाले रोगी को देखने वाले वैद्य के समान, गजब है, वैद्य उसका साक्षी है, जान लेगा कि तुमने ये गड़बड़ की है तो तुम्हें ये तकलीफ होगी, लेकिन वैद्य को कुछ नहीं होगा। उदाहरण अलग अलग है लेकिन सिद्धांत में जिस समय आत्मा में भोक्तत्व नय से सुख दुख का वेदन चल रहा है उसी समय आत्मा अभोक्तत्व नय से सुख दुख का साक्षी, गजब है, भोगना भी एक साथ है और साक्षी बना भी एक साथ है, ज्ञानी समय परिणति में पर्याय में, हाँ पर्याय में साक्षी बना प्रकट हुआ है। अगर इतनी महिमा वाली बात न होती तो गुरुदेव सम्यक दृष्टि की इतनी महान स्तुति क्यों करते, सम्यक दर्शन की इतनी प्रशंसा क्यों करते, ये सब बैठे उनमें विशेषताएं ज्ञानी में। सम्यक दर्शन हुआ तो समझ लो श्रद्धा में सिद्ध हो गया मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, और सम्यक दर्शन के बिना सब व्यर्थ है तो दिखता नहीं है, लेकिन इतना कमाल हो जाता है अंदर दृष्टि की परिणति में कि ये तो सिद्धांत की बात है, अनंत संसार कट गया। एक बात कहके मैं पूरी करता हूँ, पहले अपन लोग चलन ऐसे में ही बोलता था कि चार कषायों के चार लेवल, अनंतानंदी और प्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजीदन, चौथे गुण स्थान में कितनी गई, अनंतानंदी एक गई, बाकी कितनी बची, तीन, तो 25% काम हुआ, चार में से एक गई तो कितना हुआ 25%, 75% तो अभी काम बाकी है ना, तो ये गिनती सही नहीं है। अरे अनंतमा भाग संसार रह गया, अनंतमा भाग रागादि रह गए, और उसका उदाहरण इतना बढ़िया दिया था उन्होंने कि समझ लो जो 1,00,000 की सेना है, युद्ध हो रहा है और सेना 1,00,000 की, और सेनापति मर गया, क्या नुकसान हुआ, बाकी तो 99,000 तो है ना, एक ही तो मरा ना, अरे एक नहीं मरा, तो पूरे 99,999 की दम खत्म हो गई, उनका उत्साह उनका जो जोश उनकी जो हिम्मत वो सब टूट गई। अब 99,000 क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, समझ में आया ना, वो सरेंडर हो जाएंगे। 93,000 सैनिकों का सरेंडर सन 1971 में बांग्लादेश के युद्ध में पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत के सामने किया था, 93,000, यहाँ तो अनंत सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसा है। ये गुणी अगुणी, कर्त्री अकर्त्री, भोक्ति अभोक्ति, ये जरा चौथा पॉइंट पढ़ लें। तीसरी लाइन नीचे से, भगवान आत्मा गुणी ने से गुणग्राही है अर्थात उपदेश को ग्रहण करने वाला है, अगुणी ने से गुणग्राही नहीं है। अब अगुणग्राही है ऐसा नहीं, अवगुणग्राही है ऐसा नहीं, गुणग्राही नहीं है, मात्र साक्षी भाव से देखने जानने वाला है। कर्ती ने से अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाले रागादि भावों का कर्ता है, अकर्त्री ने से उनका कर्ता नहीं है, मात्र साक्षी भाव से जानने देखने वाला है। इसी प्रकार भोक्त्री ने से अपने में उत्पन्न सुख दुख का भोक्ता है और अभोक्त्री ने से अपने में उत्पन्न सुख दुख का भोक्ता, अपने में सुख दुख हो रहा है वो कह रहे भोग नहीं रहा तो काहे सुख दुख, लेकिन वो भोगना अलग चीज है और ये उनका साक्षी रहना ये दृष्टि में वेद विज्ञान में उसकी बात, मात्र साक्षी भाव से जानने वाला है। अब नेक्स्ट सेशन में अपन ये तीन जोड़े और कितने बचे, चार, 42, 43, 44, 45, 46, 47, इनकी चर्चा करेंगे अभी विराम।
Yeah.